इज्जत बंदी गुजदारों का मरुची अब दिसंबर 2011 अमेरिका है यक कोट ये था यक पाकिस्तानी शख्स के आई नाम डॉक्टर गुलाम नबी फाइंद के आइया ये गप कबूल कोत के आईएस आइया आइया लोबिंग के वास्ता इदा कश्मीर है अमेरिका था कश्मीर है वास्ता लोबिंग का आइया लक्का डॉलर दाता ओ ए वाजकार 20 जुलाई 2011 दस गिर कनक बूता मारा मरुची गपुत्रा ने गूं डॉक्टर शबीर चौधरी साहब आज के आई कश्मीर नेशनल पार्टी है जारचे ने वो आइया होती दीवाने था वशात कने
जनाब बहुत मेहरबानी है सब सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब।
शुक्रिया जनाब शबीर चौधरी साहब आपका मेरे और मेरे सुनने वालों की तरफ से। तो जनाब ये 20 जुलाई को अमरीकी हुकाम ने एक शख्स जो है डॉक्टर गुलाम नबी फाइक को आईएसआई के लिए लॉबिंग करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। ये लॉबिंग जो थी उनके मुताबिक ये गैर कानूनी थी वहां अमेरिका में। तो आज 7 दिसंबर को उन्होंने अमेरिका के कोर्ट में इसका एतराफ किया। हमारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि आईएसआई को क्या जरूरत है इतने लाखों डॉलर खर्च करने का और ऐसे लोगों को लॉबिंग करने के लिए इंतखाब किया जाए।
देखिए जी, पहली बात तो यह है कि डॉक्टर गुलाम नबी फाई नाम है उनका। बहुत अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, कश्मीरी हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान को जरूर क्यों पेश आई। असल में देखिए, ये सारा मसला जो कश्मीर है, ये एक लिहाज से पाकिस्तान ने ही पैदा किया हुआ है। थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, जब ब्रिटिश राज खत्म होता है और उस वक्त 15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान वजूद में आ जाते हैं, वो टेक्निकली और लीगली रियासत जम्मू कश्मीर भी आजाद और खुद मुख्तार हो जाती है। इसका एतराफ कायद आजम साहब ने भी किया और लॉर्ड माउंट बैटन ने भी किया कि रियासत जम्मू कश्मीर आजाद और खुद मुख्तार हो जाती है। और उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए पाकिस्तान ने रियासत जम्मू कश्मीर के साथ, जिसको कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, उसको माहिदा कायमा कहते हैं। तो ये माहिदा कायमा दो आजाद खुद मुख्तार रियासतों के दरमियान होता है। कि उसका मतलब यह था कि पाकिस्तान हर वो सर्विस प्रोवाइड करेगा जो पहले सर्विस मिलती थी उनको गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से मिलती थी। और बाद में 22 अक्टूबर 1948 को पाकिस्तान ने 47 को 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने इन टोटल वायलेशन ऑफ दैट स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट उन्होंने एक ट्राइबल इन्वेजन कराई, यानी जिसको कहते हैं कबायली हमला कराया था। और लोगों को प्राप्त करना तो ये किया गया कि ये लोग कश्मीरियों को आजाद कराने के थे। बेसिकली ये कश्मीरियों पर कब्जा करने के लिए गए थे, आजाद कराने के लिए नहीं गए थे। और एक प्राप्त करना ये था कि ये जहाद के लिए गए हैं और जो कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा था तो इसलिए गए थे मदद करने के लिए। अब रियासत जम्मू कश्मीर, यानी खासतौर पर वादी में इन्होंने हमला किया था, मुजफ्फराबाद में और बारामूला की तरफ गए थे, श्रीनगर जाना था, उन्होंने कब्जा करना था कैपिटल पर। अब वादी में, यानी वादी कश्मीर में 95% मुसलमान थे। और आप ये तो नहीं हो सकता कि 95% को 5% मार रहे थे, तो ये भी इनका प्रोपेगंडा गलत था। ठीक है जी। फिर कहते हैं जी, इन्होंने असल में जम्मू में मुसलमानों पर जुर्म हो रहा था, वहां पर जाना था। अब हम कहते हैं कि अगर जम्मू में जाना था तो फिर सियालकोट की तरफ से जाते या गुजरात की तरफ से जाते, जहां से वहां से सिर्फ 30 मील के फासले पर था वो जम्मू। और फिर यह कि जो जम्मू में फतात होते हैं वो अगस्त 1947 में होते हैं, इनका हमला होता है 22 अक्टूबर को, तो ये 2.5 महीने क्या करते रहे। इसीलिए ये सारी साजिश है, ये पाकिस्तान की उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए किया था। जब इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की और कब्जा ना हो सका, इसलिए कि ये बारामूला में लूट मार करते रहे, औरतों को रेप किया, ये डॉक्यूमेंट्री चीजें, रेप भी किया लूट मार भी की और भांगड़े डालते रहे 3 दिन तक बारामूला में। बारामूला से श्रीनगर सिर्फ जो है 28-30 मील है, तो अगर चाहते तो चंद घंटों में कब्जा कर सकते थे, इसलिए कि वहां पर कोई रुकावट नहीं थी। भारत की ये महाराजा की फौजें भाग गई थी। ये इस तरह करते रहे। उसके बाद महाराजा ने रियासत जम्मू कश्मीर के रूलर के हैसियत से हिंदुस्तान से दरखास्त की कि आप हमें मदद करें। यानी दो दो पड़ोसी थे, एक पाकिस्तान एक इंडिया। एक पड़ोसी ने माहिदा कायमा की खिलाफवर्जी करते हुए हमला कर दिया, तो महाराजा के पास कोई चॉइस ही नहीं रह गया था कि वो दूसरे पड़ोसी से मदद मांगे इंडिया से। इंडिया ने कहा कि आप आशा करें कि आप हमारे साथ एक्सेशन करें। अच्छा, इन्होंने एक्सेशन की जिसको प्रोविजनली एक्सेप्ट किया गया था। मैं शॉर्ट ब्रीफ में कह रहा हूँ, प्रोविजनली एक्सेप्ट किया गया। तो ऑन 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान की फौजें वहां पर लैंड हो गई थी। ठीक। अब हम ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान हमला ना कराता, ना महाराजा को मदद के लिए अपील करना पड़ती, ना हिंदुस्तान की फौजें आती और ना ही हमारे साथ ये मुसीबत होती कि हम डिवाइडेड होते इस वक्त, हम एक तरफ इंडिया है एक तरफ पाकिस्तान है। तो हम ये कहते हैं कि हमारी सारी मिसालें मुसीबतें हैं उनकी जो बुनियाद है वो 22 अक्टूबर को पड़ी जब पाकिस्तान ने उस पर हमला कराया। एक तो ये बात आ गई, उसके बाद पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अंदाज में इस मसले को उठाया। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक कमीशन कायम किया था, उस कमीशन ने वहां पर जाकर इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद उन्होंने 13 अगस्त 1948 को एक करारदाद पास की, उसको अनसिप रेजोल्यूशन कहते हैं, 13 अगस्त 1948। उसमें ये बात कही गई थी कि चूंकि पाकिस्तान ने यहां पर हमला किया है, उस सिचुएशन बदल गई है, पाकिस्तान को डिमांड किया जाता है पाकिस्तान से कि वो अपनी सारी फौजें रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर निकले और सारे वो लोग वो ट्राइब्स मैन हों या वो पाकिस्तानी जो लड़ने के खातिर गए थे वो वहां से निकलें, और जब ये सारे लोग निकल जाएंगे रियासत जम्मू कश्मीर से और कमीशन ये बताएगा कन्फर्म करेगा कि ये ठीक हो गया, उसके बाद हिंदुस्तान से कहा जाएगा कि टू विदड्रो बल्क ऑफ इंडियन फोर्सेज फ्रॉम रियासत जम्मू कश्मीर। तो बल्क का मतलब आप 55 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो हिंदुस्तान ने सारी फौजें नहीं निकालनी थी। अब पाकिस्तानियों ने जब बाद में रियलाइज किया कि हमने फौजें निकालनी है अगर तो फिर तो हम हार जाएंगे, उन्होंने फौजें आज तक आपको पता कि पाकिस्तान की फौजें आजाद कश्मीर में भी हैं, गिलगित में भी हैं, उन्होंने उस मायदे पर या उस करारदाद पर अमल करने से इनकार कर दिया, लेकिन प्राथमिकता ये कर दिया कि इंडिया जो है ना करारदादों पर अमल नहीं कर रहा, दूसरे लफ्जों में उल्टा चोर कुतवार को डांट रहा था। तो ये अब उसी उस तरीके से उस वक्त से लेकर ये चल रहा है ये जो है ना करारदादों का मसला, और पाकिस्तान जो है ना इस मसले को उलझा रहा है। बाद में 50 के बाद जब कोल्ड वॉर का हिस्सा बन गया कश्मीर, तो उसके बाद जाहिर है कि हिंदुस्तान की भी जो है उसकी नीयत बदल गई, उसने भी करारदादों पर अमल करने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान ने किया। अब आपका सवाल ये था, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दिया कि पाकिस्तान के मकासद क्या थे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए रियासत जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक होता है चाइना के साथ, इसका लिंक होता है सेंट्रल एशिया के साथ, और इस वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट थी ये जगह, वो पाकिस्तान हर सूरत इसको हासिल करना चाहता था, चूंकि दरियाओं को पानी भी दिया था, मदनियात के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था हजारों डॉलर तो कुछ भी नहीं है भाई, वो तो लाखों डॉलर जो उन्होंने इतराफ किया है, उन्होंने उसके मुताबिक 5 और 7 लाख डॉलर हर साल के मिलते थे उनको, और ये एक यानी वहां पर एक जो ना उसका नाम था कश्मीर अमेरिकन काउंसिल को, ठीक है, अमेरिका में मिलता था। इसी तरीके से इन्होंने कई तरह की काउंसिलें बनाई हुई हैं, कनाडा में भी है, स्कैंडिनेविया में भी है, लंदन में भी इनका है दफ्तर है, जो आईएसआई होता है कश्मीर का है लेकिन आईएसआई फंडेड है, ब्रसल्स में है। तो दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन कश्मीर, तो मतलब उसका ये होता है टू प्रोपेगेट एंटी इंडिया। अगर ये प्रो पाकिस्तान प्रो कश्मीर हो तो हमें कोई इतराज नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये सारे का सारा प्रो पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान के एजेंडे को एडवांस किया जाता है। अब जाहिर है कि वो अगर 5-7 लाख डॉलर आपको देते हैं साल का, तो वो तो खुद मुख्तार कश्मीर की मायत तो नहीं कराएंगे ना, वो कराते यही है कि इसको हमारे नजदीक ये मसला कश्मीर का मसला एक सियासी मसला है, ये मजहब का मसला नहीं है, ये शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ठीक है जी, या वहाबी का मसला नहीं है, ये हिंदू वर्सेज इस्लाम नहीं है, ये एक सियासी मसला है। लेकिन पाकिस्तानियों ने ये क्या कर दिया, इसको मजहब का मसला बना दिया है। फॉर दैट दे हैव देयर ओन एजेंट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वादी के अंदर भी हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं लोग, अमेरिका में हैं, ब्रिटेन में हैं, स्कैंडिनेविया में हैं, यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में हैं, जो इसको मजहबी रंग देना चाहते हैं ताकि टू डिवाइड रियासत जम्मू कश्मीर इन नेम ऑफ रिलीजन। हम ये कहते हैं कि मजहब के नाम पर एक डिवीजन हो चुकी है 1947 में, एंड वी आर ऑल स्टिल पेइंग फॉर इट, अभी तक हम उसका जो है हिसाब उतरे हैं, अभी तक वो नफ्सें फैली हुई हैं, और पाकिस्तान वाले चाह रहे हैं कि इसको मजीद जो है ना मजहब के नाम पर तकसीम किया जाए। और आप मुझे बताएं कि जो लोग अगर इसको सियासी मसला है और उसको मजहब के नाम पर कर रहे हैं, रियासत जम्मू कश्मीर को अगर आप जोग्राफियाई देखें शुरू देखें, वादी ओवरवेलमिंग जो है ना ये मुस्लिम है, ठीक है 95%। इसी तरह जम्मू जो है ओवरवेलमिंग नहीं लेकिन वो जो है ना मेजोरिटी वहां पर हिंदू की है या नॉन मुस्लिम है, लद्दाख में भी मेजोरिटी जो है ना वो बुद्धिस्ट की है। अगर मजहब के नाम पर करेंगे तो दैट मींस यू आर प्रैक्टिकली डिवाइडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब इसी तरीके से ये मैंने बेसिकली मेरे हिसाब से मैं लफ्ज जानबूझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये फितना डाल रहे हैं, ये मजहब के नाम पर एक ऐसा फैनेटिज्म पैदा कर रहे हैं जो आने वाली नस्लों के लिए तबाही बर्बादी का पैगाम लेकर आएगी। इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उसके बड़ा मसला ये है कि उन्होंने مذہب کے نام پر جو گروپس قائم کیے ہیں وہ اپنے منہ سر روکیں. ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کو بھی وہ تباہی بربادی سے ہم کنار کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ مذہب کا مسئلہ نہیں، یہ سیاسی مسئلہ ہے. وہ یہ مسئلہ الحاق یعنی ہندوستان کے ساتھ الحاق کا یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک قوم کی مستقبل کا مسئلہ ہے. کشمیری لوگوں کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں. اس میں آپشن آف انڈیپینڈنٹ کشمیر ہر صورت ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم مذہب کی بنیاد پر کریں گے تو ظاہر ہے کہ جو بدھسٹ ہیں یا نان مسلم ہیں وہ تو ہمارے ساتھ نہیں دیں گے. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جو مسلمان ہیں، لبرل مائنڈیڈ ہیں اور سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہیں، وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کی جنگ نہیں ہے تو وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے. تو پریکٹیکلی یہ تو ہمارے یہ سول وار کرا رہے ہیں. تو یہ آئی ایس آئی کا یا پاکستان کا ایک ایجنڈا ہے کہ اس مسئلے کو پروموٹ کیا جائے، یعنی کہ وہ دوسرے لفظوں میں وہ آگے نہیں ہونا دینا چاہتے. لاٹ آف ایکسپرٹس سے پاکستان ڈو ناٹ نیڈ کشمیر، ان کو کشمیر ڈسپیوٹ چاہیے ان آرڈر ٹو ہیو دس لارج آرمی، ان آرڈر ٹو ہیو وٹ دے ہیو، ان آرڈر ٹو ہیو دس ویری بگ چنک آف جو پاکستان کا جو ڈیفینس ہے، جو منی ہوتا ہے، جو بجٹ ہوتا ہے. اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو پھر لوگ کہیں گے بھائی اب مسئلہ تو حل ہو گیا، اب آپ کو یعنی کس سے لڑائی کرنی ہے، آپ کو اتنی بڑی آرمی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سو ان ادر ورڈ، ان آرڈر ٹو جسٹیفائی بگ چنک آف بجٹ دے نیڈ کشمیر ڈسپیوٹ، اور اس لیے مسئلہ چل رہا ہے. اور یہ بہت سے لوگ ہیں، جو ڈاکٹر فائز صاحب کا بجٹ تھا اس سے کہیں بڑا بجٹ تو برسلز میں ہے، اس سے کہیں بڑا بجٹ جو ہے لندن میں ان کا جو سینٹر ہے. اب یہ ہے کہ دے ہیو بین ویری کلیور، وہ پیسے جو ہے نا ڈائریکٹ نہیں دیتے نا، ان کے انہوں نے اپنے آدمی رکھے ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں. وہ جو بزنس مین ظاہر ہوتا ہے کہ ڈونیٹ کرتے ہیں ان کو، لیکن ان کو بزنس مین کو جو ہے نا ایک طریقے سے آئی ایس آئی جو ہے ان کو پے بیک کر دیتی ہے. تو اٹس اے ویری ویل تھاٹ اور ویری پلانڈ جو ہے نا ایک آپریشن ہوتا ہے ان کا، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں. اور ڈاکٹر فائز صاحب جو فنڈس کے، اگر وہ بھی اگر پاکستان کے یا پاکستان کے آئی ایس آئی کے اور سی آئی اے کے اگر اختلافات نہ ہوتے تو شاید ان کو بھی نہ پکڑا جاتا. انہیں امریکیوں کو پتہ تو تھا کہ وہ کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سی آئی اے کے ایجنٹس کو وہ تنگ کر رہے ہیں پاکستان میں، تو انہوں نے کہا بھی اگر آپ سی آئی اے کے ایجنٹس کو تنگ کریں گے تو ہم آپ کا جو ایجنٹ ہے انورٹڈ کوما جو ڈاکٹر فائز کی صورت میں ان کے پاس ہیں اور جو ان کا ایجنڈا پروموٹ کر رہے ہیں تو ہم ان کو تنگ کریں گے. پاکستان جو ہے، پاکستان ایز اے نیشن اسٹیٹ از ان سیریس کرائسس. کوئی پتہ نہیں پاکستان کا کیا بنے گا، بلوچستان ان کے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا، دوسرے جو صوبے ہیں رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اس وقت یعنی کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا. وزیر اعظم رات کو سوتا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ صبح میں جاگوں گا تو وزیر اعظم ہوں گا یا نہیں ہوگا. تو ایسے ملک کے ساتھ ہم نے مل کر کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. ہم تو کہتے ہیں جی ہم کسی بھی صورت میں، میں ایز اے ایک انڈیویجول میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور ہماری کشمیر نیشنل پارٹی جو ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم ہندوستان کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے، ہم آزاد و خود مختار رہنا چاہتے ہیں. اگر میرے ایک کشمیری دوست نے کہا تھا سری نگر سے، اس نے کہا کہ میری مرضی ہے کہ میں آزاد و خود مختار رہوں، لیکن اگر میں نے کسی کو آقا ماننا ہے، کسی کی غلامی کرنی ہے، پھر کم از کم اس کی غلامی کرنی چاہیے جو خود غلام نہ ہو. یعنی کہ پاکستان تو خود غلام ہے، غلاموں کا غلام بننے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. میری بات سمجھ گئے نا؟ وہ پھر کہا میں اس کو ایسے آقا کو تلاش کروں گا جس میں کوئی انسانیت بھی ہو. وہ جو آقا اپنے ملک کو پانچ بار فتح کر چکا ہو، جو پانچ بار یا چار بار فتح کر چکا ہو، جو پانچ بار بلوچستان پر قبضہ کر چکا ہو، جو اس پاکستان میں لاکھوں کے مسلمانوں کو مار چکا ہو، جو فاٹا میں زاروں مسلمانوں کو مار چکا ہو، جو بلوچستان میں زاروں لوگوں کو مار چکا ہو اور زاروں جو ہے نا غائب ہیں، ایسے آقا کے ساتھ مل کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ میرا پیغام جو ہے نا بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم نے آقا ہی تلاش کرنا ہے تو پھر ایسا آقا ہونا چاہیے جس کے دل میں کوئی رحم دلی ہو، جس میں دل میں کوئی انسانیت ہو، جس کا ٹریک ریکارڈ کچھ ٹھیک ہو، جس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہزاروں لوگ غائب ہیں، جس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اپنے لوگوں پر F-16 سے حملے کیے جاتے ہیں، ان کو تباہ برباد کیا جاتا ہے. تو ایسے آقا کے ساتھ ہم نے مل کر کیا کرنا ہے؟ ہم کشمیری جو ہیں ہم تو پاکستانی نہیں ہیں، لیکن ٹیکنیکلی جہاں پر جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے اس وقت ریاست پاکستان کے اندر، اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر، وہ تو پاکستانی ہے، وہ مسلمان ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اثر کیا ہوگا جب ہم مل گئے ان کے ساتھ. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بابا ہمیں معاف رکھو، ہم آپ کے ساتھ حصہ نہیں بننا چاہتے. اور میں آپ کے سننے والوں کو بھی میرے تو سے اللہ حافظ، کسی کو ناگوار گزری ہو بات تو میں معذرت کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ سر.
اوکے، اللہ حافظ.